सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सयलो वसगणिवः संवरणेने वजसफिट्टन्ति पाशस्सतसणमिं पाषणु यो अंपरु वेमो। यह श्री विसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश मूल में हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 13वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणा खंड, उसमें अभी हम कर्म अनुयोग द्वार की चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 79 पर आ गए हम। यहाँ ध्यान की बात चल रही है अपनी, तो शुक्ल ध्यान की बात चल रही थी और उसमें भी द्वितीय जो शुक्ल ध्यान है उसकी चर्चा चल रही थी। हमने 63 तक की गाथाएं पढ़ी थी, अब यहाँ आगे पढ़ेंगे। इसका नाम है एकत्व वितर्क अविचार। तो किसी एक द्रव्य एक योग के द्वारा ध्यान करना, उसको उस ध्यान का एकत्व कहा था। जो पूर्वगत है साधु तो कुशल है वो, और इस ध्यान को ध्याता है तो वितर्क यानी श्रुत का ध्याता है, इसलिए उसको वितर्क कहा। और ये अर्थ व्यंजन और योगों का संक्रमण यानी विचार नहीं होता, इसलिए उसको अविचार कहा था। अब यहां से आगे पढ़ेंगे, नीचे से तीसरी लाइन। इसका यह आशय है कि जिसके शुक्ल लेशा है, जो निसर्ग से बलशाली है, निसर्ग से शूर है, वज्र वृषभ वज्र नाराज सहनन का धारी है, किसी एक संस्थान वाला है। हमने कल देखा था ना, 6 संस्थान में से कोई भी संस्थान हो तो चले। 14 पूर्वधारी है, 10 पूर्वधारी है या 9 पूर्वधारी है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और जिसने समस्त कषाय वर्ग का क्षय कर दिया है, ऐसा क्षीण कषाय जीव 9 पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का द्रव्य गुण और पर्याय के भेद से ध्यान करता है, उसी पर उसका उपयोग केंद्रित होता है, एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार किसी एक योग और एक शब्द के आलंबन से वहाँ एक द्रव्य गुण या पर्याय में मेरु पर्वत के समान निश्चल भाव से अवस्थित चित्त वाले असंख्यात गुणश्रेणी क्रम से कर्मस्कंधों को गलाने वाला, वहां तो गुणश्रेणी निर्जरा है, वो भी असंख्यात गुणा है, अनंत गुणहीन श्रेणी क्रम से कर्मों के अनुभाग को शोषित करने वाले, कर्मों का अनुभाग जो है वो अप्रशस्त कर्मों की बात है, उसका अनुभाग अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा घटता जाता है, वो भी श्रेणी रूप से कहा है उसमें। और कर्मों की स्थितियों को एक योग तथा एक शब्द के आलंबन से प्राप्त हुए ध्यान के बल से घात करने वाले, स्थितियों का घात करता है ना वो, अपकर्षण द्वारा स्थिति भी घटती चली जाती है, उस जीव का अंतर्मुहूर्त काल जाता है। यानी इसी एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान में अंतर्मुहूर्त रहता है, तब क्या होता है उसको बताते हैं। तदनंतर शेष रहे क्षीण कषाय के काल प्रमाण स्थितियों को छोड़कर, स्थिति यानी यहां निशिक, कर्म के जो निषेक है वो क्षीण कषाय गुणस्थान का जो अभी रिमेनिंग काल है उसको छोड़कर उसके ऊपर की जो स्थितियां हैं वो जो निषेक है उनकी उपरीम सब स्थितियों की उदयादि गुणश्रेणी रूप से रचना करके। कल हमने जो गुणश्रेणी देखे थे ना, अपकर्षण होता है और जो नीचे के निषेकों में ऊपर के निषेकों में से परमाणु आ मिलते हैं, तो इसमें दो प्रकार की गुणश्रेणी हो सकती है। एक तो उदय के समय से लेकर ही गुणश्रेणी रूप से वो परमाणु दिए जाते हैं, या उदयावली छोड़कर ऊपर दिए जाते हैं। उदय के समय से लेकर जो दिया जाता है तो उसको कहते हैं उदयादि गुणश्रेणी, और उसको अगर छोड़ेंगे तो उसके ऊपर होते उदयावली के बाह्य गुणश्रेणी होती है। तो यहाँ उदयादि गुणश्रेणी रूप से रचना करके पुनः स्थिति कांडक घात से बिना अधस्थिति गलना द्वारा ही, यानी अभी स्थिति कांडक घात के बिना ही क्या होता है, अधस्थिति गलन, यानी एक एक निषेक खिर जाएगा, उसको कहते हैं अधस्थिति गलन। वो बिना शब्द जो है वो स्थिति कांडक के लिए है, स्थिति कांडक से बिना अधस्थिति गलना द्वारा ही असंख्यात गुण श्रेणी क्रम से, ये पूरा एक शब्द चाहिए असंख्यात गुण श्रेणी, क्योंकि वो असंख्यात गुण श्रेणी क्रम ऐसा भी उसको कह सकते हम, कर्म स्कंदों का घात करता हुआ, क्योंकि अपकर्षण द्वारा नीचे के निषेकों में बहुत सारे उदयादि गुण श्रेणी है, तो वो गुण श्रेणी में बहुत परमाणु नीचे आए हैं, तो एक एक भी निषेक खिर जाएगा तो भी उसमें असंख्यात समय प्रबद्ध खिरते हैं। क्षीण कषाय के अंतिम समय के प्राप्त होने तक जाता है, और वहां क्षीण कषाय के अंतिम समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय इन तीन कर्मों का युगपत नाश करता है। इस प्रकार इसका नाश हो जाने पर यह जीव तदनंतर समय में, अंतिम समय में नाश हुआ इसका, तदनंतर समय में केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी और अनंत वीर्य का धारी तथा दान लाभ भोग और उपभोग के विघ्न से रहित होता है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इन्हें 13वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। शंका, दोनों ही शुक्ल ध्यानों का क्या आलंबन है? उसका समाधान, क्षमा मार्दव आदि आलंबन है। इस विषय में गाथा, अखंती मत्तवच्चव मुत्तियोजिन मदप्पहाणाओ आलंबने ही जेहिं सुखच्छाणं समारुहई। उसका अर्थ देखते हैं, क्षमा मार्दव आर्जव और संतोष ये जिनमत में ध्यान के प्रधान आलंबन कहे गए हैं। हाँ, क्रोधमान मायालोभ के अभाव रूप जिन आलंबनों का सहारा लेकर साधु शुक्ल ध्यान पर आरोहण करते हैं, ये तो हम दस धर्म में भी देखते हैं, जिसको उत्तम कहा था वहां भी, वो तो उसके इसको समझाने के लिए चार नाम लिए। यहाँ पर दस धर्म में हम वो दस लक्षण कहते हैं, परंतु है धर्म एक वीतरागता, यानी वीतरागता के आलंबन से ही श्रेणी चढ़ी जाएगी है, और उसको चार में विभाजित करने तो क्षमा मार्दव आर्ज और संतोष, क्रोध मान माया और लोभ के अभाव रूप। अब दोनों प्रकार के शुक्ल ध्यानों के फल का कथन करते हैं। पहले उसका ध्येय क्या है बताया कि दोनों की, धर्म और शुक्ल ध्यानों के ध्येय समान है, ऐसी भी बात की थी, उसका काल की बात की थी, उसके लक्षण आलंबन ये सब हम देख चुके, अभी उसका फल देखेंगे। 28 प्रकार के मोहनीय की सर्वोपशमना होने पर उसमें स्थित रखना पृथक्त्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान का फल है। ये उपशमना कब होती है? हाँ, होती है ना, वो तो जब उपशमना पूर्ण होती है तब हम उसको ग्यारहवा गुणस्थान कहते हैं, है ना? क्योंकि दसवें में तो सूक्ष्म लोभ था और वो भी पूर्ण रूप से उपशमित होते ही उस समय हमने क्या कहा उसको, ग्यारहवा गुणस्थान। ग्यारहवें गुणस्थान में और उपशमना करने का कार्य नहीं चल रहा है, ग्यारहवें में क्या होता है वो उपशमित रीति से रहता है। तो यही बात कही, उपशमना होने पर उसमें स्थित रखना। ग्यारहवें गुणस्थान में तो है वैसा ही स्थित है अंतर्मूर्त तक। तो ये पृथक्त्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान का फल क्या है? तो अंतर्मूर्त तक उसी ग्यारहवें गुणस्थान रूप से रहना, मोहिनी की उपशमना में स्थित रखना जीव को। परंतु यानी वो ग्यारहवें गुणस्थान कंटिन्यू रहना, ये तो पृथक्त्व वितर्क वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान का फल कहा। तो ग्यारहवा गुणस्थान कैसे प्राप्त हुआ, मोहिनी का उपशम कैसे हुआ, वो बात यहां बता रहे हैं। परंतु पेज नंबर 81, मोह का सर्वोपशम करना, पूरे पूरा उपशम, ये तो उपशम की बात तो चल ही रही है। उपशमना प्रारंभ कहां से होती है, आप क्या कहते हैं? हाँ, उपशमना यानी वो चारित्र मोह की उपशमना, चौथे वाले की नहीं बात, चौथे में होते हैं वो तो दर्शन मोहिनी की होती है, उसकी नहीं बात, आठवें से उपशमना कहां से शुरू होती है? नहीं 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 नहीं, नौवे। हाँ, अभी अभी चार ही गुणस्थान है, एक एक का नाम ले लो। देखो, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में पहले वो अंतर करता है और अंतर के बाद ऊपर के जो कुछ पड़े हैं प्रकृतियां उनकी एक एक करके उपशमना होती है। पहले वेद की होगी, फिर क्रोध वगैरह की, इस तरह से। यानी वो उपशमना का प्रारंभ नौवे गुणस्थान का संख्यात भाग बीत जाने पर होता है। तो वहां उसकी उपशमना शुरू हो जाएगी और फिर वो सूक्ष्म लोभ रहता है उसकी उपशमना दसवें के अंत में पूर्ण होती है। चालू तो रहते ही है वो, उपशमने का कार्य है, एक समय में वाला तो है ही नहीं, अंतर्मूर्त तक चलता रहता है। तो क्रम से एक एक प्रकृतियों का उपशम होते होते दसवें में सूक्ष्म लोभ है उसकी भी उपशमना होती है और फिर जीव ग्यारहवें गुणस्थान में पहुंचता है। तो ये जो मोह का सर्वोपशम करना धर्म ध्यान का फल है, क्योंकि वहां पहले तो धर्म ध्यान बताया। देखो यहाँ जो जब तक कषाय है ना तब तक धर्म ध्यान बताया। मंजू बहन आप नहीं थी ना, हम तो हमेशा चौथे से सातवें तक धर्म ध्यान कहते हैं और शुक्ल ध्यान आगे कहते हैं। इस पुस्तक में ये अपेक्षा खास ध्यान रखने योग्य है कि चौथे से लेकर दसवें गुणस्थान तक कषाय है तो वहां तक धर्म ध्यान कहा है, ग्यारहवें वाले को पृथक्त्व वितर्क कहा और बारहवें वाले को एकत्व वितर्क कहा। तो इसलिए यहां कहते हैं मोह का सर्वोपशम करना धर्म ध्यान का फल है, क्योंकि क्यों के ऊपर बिंदी लगाना, क्योंकि कषाय सहित धर्म ध्यानी के सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में मोहनीय कर्म की सर्वोपशमना देखी जाती है, पूरे पूरी उपशमना उसके अंत समय में होती है। तीन, हाँ धर्म ध्यान, नहीं अभी तक क्या लिखा था, धर्म ध्यान लिखा था क्या, धर्म लिखा था, धर्म अन्य जीव लिखते हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं। ये देखो यहाँ पर है ना धर्म ध्यान धर्म ही शब्द आया, ये डबल म है ना उसके बदले म और य करना। फिर से, कषाय सहित धर्म ध्यानी के सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में मोहिनी कर्म की सर्वोपशमना देखी जाती है। तीन घाती कर्मों का निर्मूल विनाश करना एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का फल है, ये शुक्ल ध्यान का दूसरे प्रकार का जो 12वें गुणस्थान में होता है। परंतु मोहनीय का विनाश करना धर्म ध्यान का फल है। ये ख्याल में है क्या करना चाहते? तीन घातिया कर्म जो है ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, उनका समूल विनाश यानी पूरा क्षय वो किसका कार्य? वो एकत्व वितर्क अविचार नाम के शुक्ल ध्यान का। परंतु मोहनीय का जो समूल विनाश करना है, ऊपर तो हमने उपशमना की बात की थी, उपशमना भी धर्म ध्यान से होगी और समूल विनाश भी धर्म ध्यान का फल है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय क्षपक के भी वही होगा कषाय है ना तब तक, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में उसका विनाश देखा जाता है। पहले उपशम देखा जाता है कहा था, अब विनाश कहा गया है, तो दोनों ही धर्म ध्यान के फल है, ये बात यहाँ बताई। शंका, मोहनीय कर्म का उपशम करना यदि धर्म ध्यान का फल है तो इसी से मोहनीय का क्षय नहीं हो सकता, क्या कहना चाहते हैं? वहां भी धर्म ध्यान और यहां भी धर्म ध्यान, तो एक को उपशम और एक को क्षय ऐसा क्यों? क्योंकि एक कारण से दो कार्यों की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि धर्म ध्यान अनेक प्रकार का है, इसलिए उससे अनेक प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति मानने में कोई विरोध नहीं आता। शंका, एकत्व वितर्क अविचार ध्यान के लिए अप्रतिपाती विशेषण क्यों नहीं दिया? वो अप्रतिपाती जरा स्पष्ट करना बराबर। अप्रतिपाती का अर्थ क्या होता है? जो चालो वो गिरे नहीं, उसको अप्रतिपाती कहा। ये अप्रतिपाती शब्द कहाँ सुना था? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, अच्छा हाँ। और ये अवधि ज्ञान में होने अप्रतिपाती, अप्रतिपाती का अर्थ क्या है? तो वहां हाँ उसको ही अमन कहते हैं, उसको अप्रतिपाती प्रतिपाती नहीं कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो जो अवधि ज्ञानी है वो चारित्र से भ्रष्ट हो जाए तो उसको कहेंगे प्रतिपाती है, और चारित्र उसका चालू रहता है तो उसको कहेंगे हम संयम चालू है तो उसको कहेंगे अप्रतिपाती। अवधि ज्ञान के बारे में बताएंगे, कंटिन्यूअस रहेगा उसको तो अवस्थित या वर्धमान या ऐसा कहेंगे। अवधि ज्ञान की वहां बात नहीं, संयम से गिरने नहीं गिरने की बात है। अवधि ज्ञान में जो प्रतिपाती और प्रतिपाती कहा, देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अप्रतिपाती विशेषण क्यों नहीं दिया? समाधान नहीं, क्योंकि उपशांत कषाय जीव के भव क्षय और काल क्षय के निमित्त से, उपशांत कषाय ने 11वां गुणस्थान, वो 11वां गुणस्थान क्यों समाप्त होता है? या तो भव समाप्त हुआ, किसी का मरण हुआ तो 11वें में से छुटकर वो देव में चला जाएगा, चौथे में चला जाएगा। और काल क्षय ने अंतर्मूर्त ही उसका काल है, उसके बाद तो नियम से वो 10वें में आने वाला है, तो उसका काल पूरा हुआ। तो कहते उपशांत कषाय जीव के भव क्षय और काल क्षय के निमित्त से पुनः कषायों को प्राप्त होने पर एकत्व वितर्क यहां लिया। अच्छा फिर आगे शंका पूछी, कषायों को प्राप्त होने पर एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का प्रतिपात देखा जाता है। शंका, यदि उपशांत कषाय गुणस्थान में एकत्व वितर का अविचार ध्यान होता है तो उवसंतोदुपदत्तम इत्यादि गाथा वचन के साथ विरोध आता है, क्योंकि अभी अभी तक हमने उपशांत कषाय में तो पृथक्त्व विचार देखा था, पृथक्त्व वितर का विचार। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उपशांत कषाय गुणस्थान में ये यहां बताते हैं केवल पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और क्षीण कषाय गुणस्थान के काल में सर्वत्र एकत्व वितर्क विचार ध्यान ही होता है, ऐसा भी कोई नियम नहीं। देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा था ना, तो उसमें क्षीण कषाय का संख्यात्वा भाग बीत जाने पर ये ध्यान शुरू होता है, ऐसा पढ़ा था अभी तक हमारा जो पढ़ना था। इसलिए उन्होंने कहे वही होता है, ऐसा कोई नियम, क्योंकि वहां योग परावृत्ति का कथन एक समय प्रमाण अन्यथा बन नहीं सकता। योग परिपरावृत्ति ने योग में पलटना, तो ये एक समय प्रमाण बताया है क्षीण कषाय के गुणस्थान में। इससे क्षीण कषाय काल के प्रारंभ में पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का अस्तित्व भी सिद्ध होता है। हमने तो अभी तक ऐसा याद किया था, पहले हमारी अभी यहाँ कोई अलग अपेक्षा से दसवें तक उन्होंने बताया धर्म ध्यान। अभी तक हम क्या देखते थे, सातवें तक धर्म ध्यान है, आठवें से शुक्ल ध्यान है। तो आठवें गुणस्थान से बारहवें के शुरू तक पृथक्त्व वितर्क है, और बारहवें के संख्यात भाग बीत जाने पर एकत्व वितर्क शुरू होता है, ऐसा हमने अभी तक पढ़ा था। अब यहाँ जो इस विषय में गाथाएं बताते हैं, हाँ, उपशांत में भी उन्होंने दूसरा भी ध्यान की, यानी वो सर्वथा यही होता है ऐसी नहीं बात है, यानी दूसरों के भी उन्होंने दूसरे की भी स्वीकार किया है वहां पर उसका। अब यहाँ 65 नंबर की गाथा 82 पृष्ठ पर, जह चिर संचय मिंधन मणलो पवनु गदो धुवम दहई तह कम मिंधन ममियम खणेन झाणान लो दहई। ध्यान को अनल यानी अग्नि कहा, झाणान लो कहा ना। देखो नीचे उसका अर्थ देखते हैं, जिस प्रकार चिरकाल से संचित हुए ईंधन को, ईंधन हुआ ईंधन को, वायु से वृद्धि को प्राप्त हुई अग्नि अतिशीघ्र जला देती है, यानी अग्नि लगे और पवन जोरदार पवन हो तो अग्नि बहुत शीघ्र फैलती है, उसी प्रकार अपरिमित कर्म रूपी ईंधन को ध्यान रूपी अग्नि क्षण मात्र में जला देती है। 66, जह रोगाशय समणम विशोषण विरेयणो सह विही तह कम्माशय समणम झाणान सणादि जोगेही। जिस प्रकार पहले न रोगाशय समनम, रोगाशय का शमन, देखो जिस प्रकार विशोषण विरेचन और औषध के विधान से रोगाशय का शमन होता है, उसी प्रकार ये विरेचन ने लैक्सेटिव देते हैं ना, पेट का मैला निकल विरेचन करना उसका, और विशोषण विशेष शोषण यानी वो तो उसमें मेरे ख्याल से उपवास आदि विधान होगा कुछ विशोषण, और औषध के विधान से रोगाशय का शमन होता है, यानी रोग का शमन होता है। उसी प्रकार ध्यान और अनशन आदि निमित्त से कर्माशय का भी शमन होता है, कर्म रूपी रोग भी चला जाता है। अब शुक्ल ध्यान की पहचान का निर्देश करते हैं, असम्मोह विवेक और विसर्ग अर्थात त्याग। ये विवेक शब्द आया था अपने समय सार में भी बहुत बार आया विवेक शब्द, वहां उसका अर्थ क्या किया था, हाँ वेद ज्ञान, अच्छा है आप कैसेट सुन रही ना घर में। आदि शुक्ल ध्यान के लिंग है इस विषय में गाथाएं ऊपर पढ़ेंगे। अभया सम्मोह विवेग विसग्गात सहोन्ति लिंगाइम లింగిజ్జైజేహి ముని సుఖఛానో వగయ చిత్తో. అభయ, అసమ్మోహ, వివేక్ ఔర్ విసర్గ, ఏ శుక్ల ధ్యాన్ కే లింగ హై. జిన్కే ద్వారా శుక్ల ధ్యాన్ కో ప్రాప్త హువా చిత్త వాలా ముని పహచానా జాతా హై. 68. చాలిజ్జైవీ హేయివ ధీరోణ పరిస్సహోవ సగ్గేహి సుహుమేణున సుహుమే సుణ సముచ్చై భావే సుణ దేవ మాయాసు. వహ యని ఉస్ ముని కి బాత్ హై, ధీర పరిసహ ఔర్ ఉపసర్గోన్ సే న తో చలాయమాన్ హోతా హై ఔర్ న డర్తా హై, తథా వహ సూక్ష్మ భావో మే ఔర్ దేవ్ మాయా మే భీ నహీ ముగ్ధ హోతా. దేవ్ మాయా నే దేవోన్ కీ మాయా, దేవ్ ఆకర్ కుచ్ ఉపసర్గ కరే యా మాయా సే ఉన్కో మోహిత్ కర్నా చాహే తో ఉస్సే వే డిగ్తే నహీ హై. క్యా కేతే, సూక్ష్మ భావో మే ముగ్ధ నహీ హోతే, యానీ యే తో కషాయ భావోన్ కీ బాత్ హోగీ. దేహ విచిత్తం పేచ్ఛై అప్పాణం తహయ సవ్య సంజోయే దేహో వహివో సగ్గం నిస్సంగో సౌవదో కుణదీ. వహ దేహ కో అప్నే సే భిన్న అనుభవ కర్తా హై, ఇసి ప్రకార సబ్ ప్రకార కే సంయోగోన్ సే అప్నీ ఆత్మా కో భీ భిన్న అనుభవ కర్తా హై, తథా నిస్సంగ హువా వహ సబ్ ప్రకార కే దేహ ఔర్ ఉపధి కా ఉత్సర్గ కర్తా హై, యానీ ఉస్సే అప్నే భేద జ్ఞాన్ కర్ లేతా హై. నకసాయ సముత్థేహి బాహిజ్జై మానసేహి దుఃఖేహి ఈసా విసాయ సోగా దియేహి ఛాణో వగయ చిత్తో. ధ్యాన్ మే అప్నే చిత్త కో లీన్ కర్నే వాలా వహ కషాయోన్ సే ఉత్పన్న హుయే ఈర్ష్యా విషాద్ ఔర్ శోక్ ఆది మానసిక దుఃఖోన్ సే భీ నహీ బాధా జాతా. ఇస్కా అర్థ సరళ హై నా, ఇస్లియే అభీ హమ్ బఢేంగే ఆగే. 71. సియాయ వాదియేహి మి సారీరేహి బహు ప్యారేహిం నో బాహిజ్జై సాహూ ధ్యేయం మిసుణిశ్చలో సంతో. ధ్యేయమే నిశ్చల్ హువా వహ సాధు హై నా, ధ్యేయం మిసుణిశ్చలో సంతో. శీత వ ఆతప్ ఆది బహుత్ ప్రకార్ కీ శారీరిక బాధాఓ కే ద్వారా భీ నహీ బాధా జాతా, యానీ బాహ్య జో కుచ్ వాతావరణ మే కుచ్ గర్మీ హై అతి ఠండ హై తో ఉస్సే ఉన్కే కోయి బాధా నహీ, క్యోంకి వో తో ధ్యాన మే ఇత్నా నిశ్చల్ హువా హై, ధ్యేయ మే నిశ్చల్ హువా హై. ఇస్ ప్రకార్ దూసరే శుక్ల ధ్యాన్ కా కథన్ సమాప్త హువా హై. అబ్ తీసరే శుక్ల ధ్యాన్ కా కథన్ కర్తే హై. యథా, తీసరే కా నామ క్యా థా, సూక్ష్మ క్రియా అప్రతిపాతి. క్రియా కా అర్థ యోగ హై. వహ జిస్కే పతనశీల్ హో వహ ప్రతిపాతి కహలాతా హై ఔర్ ఉస్కా ప్రతిపక్ష అప్రతిపాతి కహలాతా హై. జిస్మే క్రియా అర్థాత్ యోగ సూక్ష్మ హోతా హై వహ సూక్ష్మ క్రియ కహా జాతా హై ఔర్ సూక్ష్మ క్రియ హోకర్ జో అప్రతిపాతి హోతా హై వహ సూక్ష్మ క్రియా ప్రతిపాతి ధ్యాన కహలాతా హై. యహాన్ కేవల్ జ్ఞాన్ కే ద్వారా శ్రుత జ్ఞాన్ కా అభావ హో జాతా హై. క్యా కహా, కేవల్ జ్ఞాన్ ప్రాప్త హువా తో శ్రుత జ్ఞాన్ రహేగా కి నహీ రహేగా, తో శ్రుత జ్ఞాన్ క్రియా యానీ క్రియా ఉసీ కో క్రియా కహా, జైసే అవగాహనా కహేంగే అవగాహన కహే తో ఏక హీ బాత్ హై నా, వైసే క్రియా సూక్ష్మ క్రియా యానీ వహ సూక్ష్మ క్రియా హువా యే విశేషణ బనా దియా ఉన్హోనే. క్రియా కే లియే సూక్ష్మ క్రియా కో సూక్ష్మ క్రియా కహేంగే, పరంతు జిస్ జీవ్ నే సూక్ష్మ క్రియా కీ హై ఉస్ జీవ్ కో క్యా కహేంగే, సూక్ష్మ క్రియ. या वो ध्यान को कहा सूक्ष्म क्रिया ध्यान, ऊपर क्या सूक्ष्म क्रियम च लिखा ना ऊपर भी, हाँ देखो फिर से, यहाँ केवल ज्ञान के द्वारा शुद्ध ज्ञान का अभाव हो जाता है इसलिए यह अवितर्क है। क्या कहते हैं देखो, शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहना, इसलिए शुक्ल ध्यान में पहले दो उस भेद जो है ना, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, उसमें वितर्क यानी वो शुद्ध ज्ञान के ऊपर उसका ध्यान का आलंबन उसका है, उसका ध्येय है, परंतु यहाँ वितर्क नहीं रहा वो, इसलिए कहते वो अवितर्क है। और अर्थांतर की संक्रांति का अभाव होने से क्यों नहीं होती संक्रांति, हाँ मंजू बेन, हाँ तो तीनों काल के सभी पदार्थों को, तीनों लोक के कहो लोक अलोक के कहो, तो एक साथ जान रहे, तो इसलिए अभी एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य तक पलटने को अवकाश कहाँ रहा, सभी उपयोग रूप ज्ञान में है उनके। अथवा व्यंजन और योग की संक्रांति का अभाव होने से अविचार है, शंका इस ध्यान में इनकी संक्रांति का अभाव कैसे है, समाधान इनके आलंबन बिना ही युगपत त्रिकाल गोचर अशेष पदार्थों का ज्ञान होता है। अभी हमें तो आलंबन होता है ना, श्रुत का आलंबन है, तो इनके तो बिना आलंबन के त्रिकाल गोचर अशेष पदार्थ, अशेष यानी कुछ बाकी नहीं, स्वर पर सब कुछ आ गए उसमें ज्ञान होता है, इसलिए त्रिकाल गोचर तीनों काल वाले, इसलिए इस ध्यान में इनकी संक्रांति का अभाव का ज्ञान होता है। इस विषय में गाथाएं 72 नंबर। अविदक्कम विचारम सुहुम किरिय बंधनम तदीय सुक्कम सुहुमिकाय जोगे भणिदम तम सौवभावगयम। तीसरा शुक्ल ध्यान अवितर्क अविचार, वो भी बराबर करना, और सूक्ष्म क्रिया से संबंध रखने वाला होता है, क्योंकि काय योग के सूक्ष्म होने पर सर्वभावगत यह ध्यान कहा गया है। सर्वभावगत सर्वभावगयम, सर्वभावों को पहुंचने वाला, अच्छा अब 73 नंबर। सुहुमम्मिकाय जोगे वट्टन्तो केवली तदीय सुक्कम झायदि निरुम्भदुं जो सुहुमं तं काय जोगम्पि। जो केवली जिन सूक्ष्म काय योग में विद्यमान होते हैं वे तीसरे, वो तीसरा बराबर करना, वो तीसरे शुक्ल ध्यान का ध्यान करते हैं और उस सूक्ष्म कायोग का भी निरोध करने के लिए उसका ध्यान करते हैं। क्या कहते हैं, ये 13वें के अंत में तो कायोग सूक्ष्म हुआ है, अब वो सूक्ष्म का भी विनाश करना है, या अंतिम अंतर्मुहूर्त में जो होता है कार्य, इसलिए वहां वो जो सूक्ष्म काय का भी विनाश करने वाले जो कुछ क्रिया है उसके लिए वहां ध्यान कहा गया है। यानी एक वस्तु को जानने रूप ध्यान वहां नहीं है, ये बात पहले भी आई थी, परंतु योग का विनाश करने रूप वहां कार्य होता है इसलिए उसको ध्यान कहा। अब इसका भावार्थ कहते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के उत्पन्न हो जाने के कारण जो त्रिकाल विषयक सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायों को जानते हैं और देखते हैं, करण क्रम और व्यवधान से रहित होकर जो अनंत वीर्य के धारक है, यानी कोई बाधा नहीं कोई क्रम नहीं है, करण में हाँ व्यवधान यानी कोई उसमें बाधा नहीं है, करण यानी इंद्रिय नहीं है, करण कोई अन्य साधन नहीं है, अन्य निमित्त भी नहीं है, ऐसा भी ले सकते हैं, साधन के अर्थ में ले सकते उसको, સાધનીય ઇન્દ્રિય કરણ ક્રમ ઓર વ્યવધાન સે રહિત હોકર જો અનંત વીર્ય કે ધારક હૈ યાની યે જે કેવલ જ્ઞાન ઓર કેવલ દર્શન મે ભી કોઈ ક્રમ નહીં રહા ભી ઇસ તરહ સે ઉસકા અર્થ કરતે અનંત વીર્ય કે ધારક હૈ તથા જો અસંખ્યાત ગુણી શ્રેણી રૂપ સે કર્મો કી નિર્જરા કર રહે હૈ દેખો કેવલી ભગવાન મે ભી ચલ રહી ના અસંખ્યાત ગુણી કર્મો કી નિર્જરા ऐसे सयोगी जिन कुछ कम पूर्व कोटि काल तक विहार कर ये अधिक से अधिक बात बताए पूर्व कोटि आयु वाला कोई जीव हो और 8 वर्ष के बाद संयम ग्रहण करके क्षपक श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त किया तो उर्वरित उसकी जो आयु है विहार कर आयु के अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर દંડ કપાટ પ્રતર ઓર લોકપૂરણ સમુદ્ધાત કરતે હૈ સમુદ્ઘાત ચાહીએ હરી સમુદ્ધાત ક્યા હૈ ઉપર ક્યા હૈ દંડ કવાડ પદર લોગ પૂરણાની કરે દી ઉસમે જો પ્રથમ સમય મેં દંડ કરતા હૈ તો ક્યા હૈ કિતની કિતના લંબા ચૌડા હૈ ઉસકો બતા રહે પ્રથમ સમય મેં કુછ કમ 14 રાજુ ઉચ્છેદ રૂપ ઉચ્છેદ યાની ઉસકી હાઇટ ઊંચાઈ ઇતના કુછ કમ ક્યું કહા વાતવલે કો છોડકર ઉપર ઓર નીચે કે નીચે વાતવલે કિતના હૈ હા 60,000 20 20 20 તીન વાતવલે ના ઓર ઉપર ઉપર 60 નહીં હૈ 1575 તો ઉપર વાલા સબસે તીન હૈ ના વહાં પર દો કોષ એક કોષ ઓર એક કોષ મેં કમ હા 1575 એને સબ મિલકર 4 કોષ હોય ને 4 કોષ મેં કુછ કમ એને એક યોજન મેં કુછ કમ હા વો કોઈ કોઈ 20 20 દિખાતે ઉપર પરંતુ વૈસા નહીં હૈ પરંતુ એ જો ઈશત પ્રાગભાર હૈ ના ઉસકે નીચે 60,000 યોજન હૈ ઓર ઉપર તો એક યોજન હી હૈ ઇસલિયે વો તો સબકો મિલકર 60,000 ઉપર ભી દિખાતે હૈ દેખો તો ઇનકો છોડકર બાકી 14 રાજુ મેં કુછ કમ મેં ઇતના સબ લેના તો કુછ કમ 14 રાજુ ઉચ્છેદ રૂપ ઓર અપને વિષ્કંભ પ્રમાણ ગોલ પરિવેદ રૂપ અપના વિષ્કંભ યાની કોણ સા વિષ્કંભ શરીર કા જો ચૌડાઈ જો હૈ જો જીવ ધ્યાન મેં બેઠે હૈ ઉસકે અપને શરીર પ્રમાણ જો વિષ્કંભ હૈ ગોલ પરિવે હા પદ્માસન મેં તો એ તો એસા ઇતના જો ચૌડા હો જાતા હૈ ઓર જો ખડગાસન મેં હોગા ઉસસે વો પદ્માસન વાલા તિગુણા હો જાતા હૈ હાઇટ અલગ હોગી તો ભી 14 રાજુ મેં આ ગઈ ના હા જો છોટા હૈ કદ મેં વો ઉસકે ઇસલિયે ઉસકે આત્માંગુલ મેં ઉસકે નાપેંગે જો જિસકા શરીર હૈ ઉસકે આત્માંગુલ ઉસકે અપને અંગુલ કે પ્રમાણ મેં ઉસકો નાપતે હૈ તો યહાં ઇતને હી બતા દિયા વિષ્કંભ પ્રમાણ ગોલ પરિવેદ રૂપ આત્મ પ્રદેશ કર સ્થિતિ કે અસંખ્યાત બહુભાગ કા યે કૌન સી સ્થિતિ કી બાત ચલ રહી હૈ કૌન સી આયુ કો છોડકર વેદનીય નામ ઓર ગોત્ર સ્થિતિ કે અસંખ્યાત બહુભાગ કા ક્યોંકિ વો સમુદ્ઘાત કિયે તો વહાં ઉસકા ફલ ભી કુછ હોગા કે નહીં હોગા તો વહાં કર્મો કી વો અસંખ્યાત ગુણા નિર્જરા હોતી હૈ ઉસકી સ્થિતિ જ્યાદા હૈ આયુ સે તો ઉસકો ઘટાઈ દિયા જાતા હૈ સ્થિતિ કે અસંખ્યાત બહુભાગ કા ઓર અનુભાગ કે અનંત બહુભાગ કા ઘાત કર સ્થિત રહેતે હૈ ઉસકા નામ દંડ સમુદ્ઘાત હૈ દૂસરે સમય મેં એ જહાં જહાં વો સમુદ્ઘાત હૈ ને ઉસકો ધ કા ઘ કરના હો દૂસરે સમય મેં પૂર્વ ઓર પશ્ચિમ કી ઓર સે वात वलय के सिवा पूरे लोकाकाश को अपने देह के विस्तार द्वारा व्याप्त कर, क्या कहते हैं, पूर्व पश्चिम में फैलते हैं। ये कपाट नाम का दूसरे समय वाला समुद्घात है। तो पहले समय में तो गोलाकार और दंडे ने ऊपर से नीचे 14 राज्यों में कुछ कम था, वो जो वीर्थ है विष्कम्भ जो वो उतना ही रहेगा और ऐसे आड़े फैलेंगे। तो पूर्व और पश्चिम किसके फैलेंगे, हाँ जिसका मुंह उत्तर की तरफ है। तो जो उत्तर उत्तराभिमुख जिसको कहते हैं, उत्तराभिमुख केवली के आत्म प्रदेश पूर्व पश्चिम की ओर फैलेंगे इस तरह से। कहां तक, वात वले को छोड़कर पूरे लोकाकाश को अपने देह के विस्तार द्वारा व्याप्त कर शेष स्थिति और अनुभाग का क्रम से असंख्यात बहुभाग और अनंत बहुभाग का घात कर, क्रम से ने स्थिति में असंख्यात बहुभाग जो रिमेनिंग जो है उसका भी असंख्यात बहुभाग। पहले समय में असंख्यात बहुभाग का नाश किया था, वो घात किया था। दूसरे समय में जितना है उसके भी असंख्यात बहुभाग का घात करते हैं और अनुभाग में अनंत बहुभाग का घात करके जो अवस्थान होता है वह कपाट समुद्घात है, तीसरे समय में प्रतर होता है। देखो, हम हमेशा जो अनंत बहुभाग का घात करने का कार्य पहले होता था जब हमने आठवें गुणस्थान से देखा, तो अनुभाग कांडकों के द्वारा होता था। तो ये अनंत बहुभाग का घात भी होना है तो उसके लिए एक कांडक के लिए एक अंतर्मूर्त लगता है। और यहाँ ये कार्य कितने में हो रहा है, एक एक समय में। स्थिति का घटना भी पूर्वावस्था में कांडकों के द्वारा होता था, अब यहाँ एक एक समय में घट रही है स्थिति। तीसरे समय में वात वलय के सिवाय पूरे लोकाकाश को, पहले तो अभी उत्तराभिमुख है उसके तो पूर्व पश्चिम फैले थे, अभी दक्षिणोत्तर भी पूरे फैल जाएंगे प्रदेश, वात वलय को छोड़ा है इतनी बात। वात वलय को अंतिम लोक पूरण में ही वो उसमें फैलेंगे सर्वत्र, अपने जीव प्रदेशों के द्वारा व्याप्त कर शेष स्थिति और अनुभाग का क्रम से असंख्यात बहुभाग, यानी स्थिति के लिए असंख्यात बहुभाग और अनुभाग के लिए अनंत बहुभाग का घात कर जो अवस्थान होता है वह प्रतर समुद्घात है। चौथे समय में सब लोकाकाश को व्याप्त कर, यानी अभी वात वलयों में भी पूरे फैल चुके, शेष स्थिति और अनुभाग का क्रम से असंख्यात बहुभाग और अनंत बहुभाग का घात कर जो अवस्थान होता है यह लोक पूरण समुद्घात है। हमने देखा ना, दंड, फिर कपाट, फिर प्रतर और लोक पूरण। अब यहां शेष स्थिति का प्रमाण अंतर्मूर्त है जो कि आयु के प्रमाण से संख्यात गुणा है। यहां से लेकर आगे सब स्थिति कांडक और अनुभाग कांडकों को अंतर्मूर्त के द्वारा घातता है। स्थिति कांडक का आयाम अंतर्मूर्त है और अनुभाग कांडक का प्रमाण शेष अनुभाग के अनंत बहुभाग है। इस क्रम से अंतर्मूर्त काल जाने पर योग निरोध करता है। ये अंतिम अंतर्मूर्त की बात है ना, तो जब योग निरोध हो जाएगा पूर्ण रीति से तो वो अयोगी बन जाएगा। शंका, योग निरोध किसे कहते हैं? योगों के विनाश की योग निरोध संज्ञा है। यथा, पहले तो सूक्ष्म किया था योग, अभी योगों का पूर्ण विनाश हो जाएगा। यहां अंतर्मूर्त काल बिताकर बादर कायोग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध करता है। ये तो सूक्ष्म क्रिया के पहले की बात है। यह सूक्ष्म क्रिया का जो कार्य है उसमें क्या करता है, बादर का सूक्ष्म कैसे करता है, वो उसके पहले बात बता रहे। समुद्घात के बाद की बात नहीं है ये। हाँ, ये बिना समुद्घात के अन्य जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती होती है ना, क्या होता है उसकी बात चल रही है। समुद्रात करे और न भी करे तो वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तो सबको होता है, तो ये बात जो है वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती की बात यहाँ बता रहे, क्योंकि योग का निरोध जो है, योग का नाश है तो बाद में होगा, पहले सूक्ष्म किया जाता है ना, इसलिए यहाँ कहते हैं यहाँ अंतर्मूर्त काल बिताकर बादर काय योग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध करता है। ये अंतर्मूर्त बाकी रहता है तो क्या क्या बात होती है वो सब बताएंगे यहाँ पर, यानी सूक्ष्म करने का कार्य चल रहा है। तो पहले बादर का योग था, बादर मनोयोग था, बादर वचन योग था, तो कहते हैं बादर का योग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध करता है। फिर अंतर्मूर्त में उत्त के ऊपर रफार है मगर अस्पष्ट है, बादर का योग के द्वारा बादर वचन योग का निरोध करता है। फिर अंतर्मूर्त में बादर का योग के द्वारा बादर उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है। फिर अंतर्मूर्त में बादर का योग के द्वारा उसी बादर का योग का निरोध करता है। ये बादर के द्वारा यानी सब अभी बादर का योग रूप हो गया, मनोयोग और वचन योग रुक गए ना, अकेला बादर का योग हो गया, बादर काय से भी बादर काय का निरोध किया। फिर क्या हुआ, अंतर्मूर्त में सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करता है। फिर अंतर्मूर्त में सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म वचन योग का निरोध करता है। फिर अंतर्मूर्त में सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है। फिर अंतर्मूर्त काल जाने पर सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म काय योग का निरोध करता हुआ इन करणों को करता है। अब यहाँ जो कोई करण हो गए वो यहाँ पर बताएंगे। हाँ, ये भी सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म योग हुआ ना, अभी सूक्ष्म योग के बाद और क्या होगा। जैसे हम जब शपक श्रेणी में देखते थे, पहले स्पर्धक होते थे, फिर पूर्व स्पर्धक करते थे, फिर कृष्टि करते थे, इस तरह से यहाँ भी वो योगों में लगाना भी। देखो प्रथम समय में ये कौन कौन से कारण होते हैं उसको बता रहे। प्रथम समय में पूर्व स्पर्धकों के नीचे अपूर्व स्पर्धक करता है। ऐसा करते हुए प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यातवे भाग का अपकर्षण करता है और जीव प्रदेशों के असंख्यात वे असंख्यात में असंख्यात वे चाहिए ना। एक्चुअली श्रेणी का चाहिए, कुछ गलत है यहाँ पर, ऊपर पढ़ते हैं, ऊपर पांचवी लाइन लगती, आदि वगणाए अविभाग परिच्छेदानम असंख्येज्यदि भागम उक्कडति जीव प्रदेशानम च असंख्येज्यदि भागम उक्कडति। अच्छा, अपकर्षण करता है, ठीक है। असंख्येज्यदि भागम, असंख्यातवे भाग का अपकर्षण, श के ऊपर भी रफार देना। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धक करता है। क्या कहते हैं, पहले हमने ये क्रोध मान माया वगैरह उसमें देखे थे ना, अपूर्व स्पर्धक होते हैं, याद है?
वो अलग चीज़, वो अश्वकरण के तीन भाग किए थे, पहले भाग में अपूर्व स्पर्धकरण,
परंतु वो तो
स्पर्धकरण को भोगना,
वो तो
तीसरे भाग में
तो मोह के स्पर्धक थे। अब यहाँ किसकी बात चल रही, योग की बात चल रही। तो योग में भी हमने देखा था ना, एक एक योग स्थान में क्या क्या होता है, वर्गणा होती है, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, अनेक स्पर्धक होते हैं, गुणहानि कहते हैं एक योग स्थान में। अब यहाँ जितने योग है, पहले में पहले उसमें जो जितना योग है वो भी घटाना है ना, अभी अब तक जितने योग थे जघन्य में जघन्य, उससे भी उसके भी जघन्य ऐसे, उससे भी हीन ऐसे, अभी यहाँ नए स्पर्धक तैयार हो गए। हाँ, सूक्ष्म योग के बाद की बात है। तो कहते प्रथम, पहले पढ़ते यहाँ से, प्रथम समय में पांचवी लाइन, पूर्व स्पर्धकों के नीचे अपूर्व स्पर्धक करता है। तो ऐसा करता है ने क्या करता है, तो ऐसा करते हुए प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेद, पहले में पहली जो वर्गणा थी नीचे की योग में जो हम देखते हैं ना योग स्थान में, तो उस वर्गणा के जितने अविभाग प्रतिच्छेद थे उसके असंख्यातवें भाग का अपकर्षण करता है। योग तो असंख्यात में होते हैं इसलिए उसके असंख्यातवा भाग लिया। कर्मों की बात करते थे तभी हम अनंत की बात करते थे उसके स्पर्धकों की, और जीव प्रदेशों के असंख्यातवें भाग का अपकर्षण करता है, यानी जीवों कुछ प्रदेशों में योग घटेगा, कितना पहले अभी तक जितना मिनिमम पॉसिबल था उससे भी घटेगा, ये बात यहां बताना चाहते हैं। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धक करता है, यानी वो और अधिक अधिक प्रदेशों में योग घटता चला जाएगा। ये अपूर्व स्पर्धक देखो पहले समय में कुछ किए, दूसरे समय में उससे भी नीचे कम योग वाले किए, तीसरे समय में उससे भी कम योग वाले, ऐसे अपूर्व अपूर्व स्पर्धक बनाएंगे। ये अपूर्व स्पर्धक प्रति समय पहले समय में जितने किए गए उनसे अगले द्वितीयादि समयों में असंख्यात गुणे हीन श्रेणी रूप से किए जाते हैं। नंबर ऑफ अपूर्व स्पर्धक असंख्यात गुणाहीन होते हैं, और पहले समय में जितने जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर किए उनसे अगले समयों में असंख्यात गुणे श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर किए जाते हैं। संख्यात गुणा अगले समयों में संख्यात गुणा, पहले तो असंख्यात प्रदेशों में किया था ना, और उससे संख्यात गुणा। इस प्रकार किए गए सब अपूर्व स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण, जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल के असंख्यातवे भाग प्रमाण और पूर्व स्पर्धकों के भी असंख्यातवे भाग प्रमाण होते हैं। क्योंकि पहले भी स्पर्धक कितने थे तो वो तो हमेशा वो आता है ना योग में, तो हमेशा बताते हैं जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग, वर्गणा कितनी उतनी, ये कितने स्पर्धक कितने उतने, फिर भी यहाँ उतने ही है, फिर भी पहले के कंपेयर में करेंगे तो उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार अपूर्व स्पर्धक करने की विधि का कथन समाप्त हुआ। पहले क्या किया था, बादर योग से यानी बादर का योग के द्वारा अन्य सभी को बादर का योग रूप, फिर सूक्ष्म योग से सूक्ष्म का योग से सूक्ष्म अनुयोग सूक्ष्म वचन योग सूक्ष्म उश्वास निश्वास और सूक्ष्म का योग उसको नष्ट किया। उसके बाद अपूर्व स्पर्धक बने, अब उसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद अंतर्मूर्त काल तक कृष्टियों को करता है, उसको भी कृष्टि कहा, पहले तो वर्गणा कहते थे अब यहाँ उसका नाम है कृष्टि। ऐसा करते हुए अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम यानी कृष्टि को करता है ने क्या करता है उसको अब बता रहे। पहले पूर्व स्पर्धक थे उसके नीचे अपूर्व स्पर्धक बताए, अभी अपूर्व स्पर्धकों से भी नीचे दिखाएंगे। अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यातवे भाग का अपकर्षण करता है, और जीव के प्रदेशों के असंख्यातवे भाग का अपकर्षण करता है। इस प्रकार यहाँ अंतर्मूर्त काल तक कृष्टियां करता है। ये कृष्टियां प्रथम समय प्रति समय ये कृष्टियां प्रति समय ये कृष्टियां प्रति समय पहले समय में जितनी की गई उनसे आगे द्वितीयादि समयों में असंख्यात गुणीहीन श्रेणी रूप से की जाती है। पहले समय में जितनी की दूसरे समय उसे असंख्यात विभाग और नई बनी, तीसरे समय और असंख्यात विभाग ऐसे नई बनी कृष्टियां, और पहले समय में जितने जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर की गई है उनसे अगले समयों में असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर की जाती है। ऊपर ही संख्यात गुणा क्यों कहा था, ऊपर भी पढ़ते हैं। हाँ कांधे को ऊपर हम पढ़ेंगे तंतु अंतो गंतु न सोम का योग्य ने वो तो हो गया आदि वगणाए किट्टी के ऊपर एवं अंतो मुत्तम अपूव फद्द यानी करे नहीं नहीं इस प्रकार नहीं उसके ऊपर ऊपर की बात सुमकाय योगी ने सुमकाय योगम निरुम्बमानु इम्यानि करनादि करेदि परम समय अपूर्व पद्यानि करेदि पूर्व पद्यानम हेठदो अपूर्व स्पर्धा करता है प्रति में कहाँ गया संख्यात गुण हाँ देखो असंख्येज्य गुणसीनाय सेडिये जीव पदेशानम च असंख्येज्य गुणा मैं ढूंढ रही उसको वहां भी असंख्यात गुणे ही चाहिए हाँ जो हमने संख्यात गुणा मैंने भूल से असंख्यात पढ़ा था तो वो असंख्यात गुणा ही चाहिए अगले समयों में मिला अभी ऊपर का पैराग्राफ है नीचे से एक दो तीन चार पांचवी लाइन और अंतिम शब्द अगले समयों में संख्यात गुणे च बदले असंख्यात गुणे समुद्घात के बाद होता है अच्छा परंतु उन्होंने तो सूक्ष्म क्रिया के बाद यहाँ समुद्घात की बात की थी ना ओहो अंतर्मूर्त काल रहने में वहां तो अलग ही बात ली थी उन्होंने अच्छा अंतर्मूर्त अच्छा समुद्घात के बाद वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है ठीक है वहां भी एक कोई करण होता है उसका नाम मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा अवर्जित करण हाँ अवर्जित करण बरोबर अवर्जित करण आपको सब याद है हाँ आप कुछ कह रहे थे अभी हाँ बराबर यानी ऊपर से सातवीं लाइन और नीचे से चौथी लाइन उस पैराग्राफ की अंतिम शब्द देखो असंख्येज्य गुणहीनाय सेडिये जीव पदेशानम च असंख्येज्य गुणाय सेडिये हाँ कौन सा पांचवा उक्कड़ दी वो तो अपकर्षण की बात है वो असंख्यात विभाग का अपकर्षण करता है उसके नीचे नहीं नहीं अपकर्षण करता है की बात यहाँ ऊपर से छठी लाइन में आ गई है आप जो कहते हैं ना अपकर्षण की बात हिंदी में सातवें लाइन में आई थी ऊपर से जीव प्रदेशों के असंख्यात विभाग का अपकर्षण करता है हाँ और यहाँ हम कौन सी बात उसके ही नीचे चार लाइन आए जहाँ हम संख्यात गुणे का करेक्शन किया है हमने हाँ वो ऊपर जो है वो नीचे से चौथी लाइन के अंतिम शब्द देखो यहाँ क्या कहते हैं अपूर्व स्पर्धक कितने होते हैं दूसरे समय में असंख्यात गुणाहीन और जीव प्रदेश असंख्यात गुणा यानी नंबर ऑफ जीव प्रदेश जिसमें योग घटता है वो प्रदेशों की संख्या असंख्यात गुणा से बढ़ती है और जो अपूर्व स्पर्धकों की संख्या है वो असंख्यात गुणाहीन होती है आई ना ऊपर बात मिला आपका समाधान हुआ अब हम नीचे का पैराग्राफ पढ़ते फिर इसके बाद अंतर्मूर्त काल तक कृष्टियों को करता है ऐसा करते हुए अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यातवे भाग का अपकर्षण करता है अभी तक तो अपूर्व अपूर्व स्पर्धक प्रति समय बनते थे अभी अपूर्व स्पर्धक की भी जो पहली वर्गणा है नीचे वाली उससे भी असंख्यात विभाग उसका अपकर्षण करेगा, यानी उसका घटेगा, योग और घटेगा, और जीव प्रदेशों के असंख्यात विभाग का अपकर्षण करता है। इस प्रकार यहाँ अंतर्मूर्त काल तक कृष्टियां करता है। पहले हम वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते थे, अब यहाँ अनेक कृष्टियां करता है ऐसा कहेंगे। ये कृष्टियां प्रति समय पहले समय में जितनी की गई है उनसे द्वितीयादि समयों में असंख्यात गुणी हीन श्रेणी रूप से किए जाते हैं। नंबर ऑफ कृष्टियां असंख्यातवे भाग, असंख्यातवे भाग होती है, असंख्यात गुणाहीन है ना। और जीव के प्रदेशों का प्रपोर्शन क्या है, तो पहले समय में जितने जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर ये की गई थी कौन सी कृष्टियां, तो उसके अगले समय में असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर की जाती है। इसी से तो ऊपर की अपने को वो संख्यात असंख्यात की बात ख्याल में आ गई। कृष्टि गुणकार पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये कृष्टि गुणकार क्या होता है, देखो हम वर्गणा और स्पर्धकों का जब हमने स्वरूप देखा था, एक वर्गणा से दूसरे वर्गणा में जो विशिष्ट वृद्धि होती है ना अविभाग प्रतिच्छेद, तो उसमें हम एक अविभाग प्रतिच्छेद कहें, ये मिनिमम पॉसिबल जो योग की वृद्धि है प्रति वर्गणा उसको यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद कहा है, एक अविभाग प्रतिच्छेद। परंतु एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि कितनी है, नीचे से अगर कहेंगे तो कहते वो असंख्यात गुणा है। कृष्टि और वर्गणा में डिफरेंस क्या है, एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा एक अविभाग प्रतिच्छेद से ज्यादा है। तो इसको वर्गणा क्यों नहीं कहा, कृष्टि क्यों कहा, कृष्टि एक कृष्टि से उसके ऊपर की दूसरी कृष्टि वो असंख्यात गुणा योग है, उसमें वो असंख्यात का प्रमाण क्या है, तो कहते वो पल्ले का असंख्यात भाग है। इसलिए यहाँ कहा कृष्टि गुणकार कितना है, तो पल्लेपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। सब कृष्टिया जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, सभी टोटल नंबर ऑफ कृष्टिया जो है वो जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग, और अपूर्व स्पर्धकों के भी असंख्यातवे भाग प्रमाण है। पहले हमने देखा था जितने पूर्व स्पर्धक थे उसके असंख्यातवे भाग अपूर्व स्पर्धक बने, उसके भी असंख्यातवे भाग कृष्टियां बनी। ये नंबर ऑफ कृष्टियों की बात है, और उसमें योग भी कितना है वो भी असंख्यात भाग असंख्यात भाग नीचे होता चला जाता है। कृष्टिकरण क्रिया के समाप्त हो जाने पर, एक कृष्टिकरण क्रिया यानी अभी वो सब सूक्ष्म सूक्ष्म किया है ना, उसको योगों की बात चल रही है यहाँ पर। कृष्टिकरण क्रिया के समाप्त हो जाने पर फिर उसके अनंतर समय में पूर्व स्पर्धकों का और अपूर्व स्पर्धकों का नाश करता है। अंतर्मूर्त काल तक कृष्टिगत योग वाला होता है, यानी अभी उनके पूर्व स्पर्धक जैसा योग नहीं रहा ना ही अपूर्व स्पर्धक जैसे योग रहा, अत्यंत सूक्ष्म यानी कृष्टि जैसा योग रह गया। तथा अब यहां पर है देखो, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को ध्याता है, यानी ये सारी बातें समुद्घात के बाद हुई, तब तक तो बादर का योग था। हाँ, समुद्घात के काल में बादर का योग था उसका, और बाद में ये सब बातें हो गई उसके अंतिम अंतर्मूर्त में, उसको भी ये होगा डायरेक्ट। हाँ, अंतिम समय में कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग का नाश करता है। शंका, इस योग निरोध के काल में ये पूरी जो प्रोसेस बताई है ये योग निरोध की बात है, योग कैसे घटता चला जाता है उसकी बात है। इस योग निरोध के काल में केवली जिन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को ध्याते हैं यह जो कथन किया है वह नहीं बनता, ये शंका करके शंका है क्योंकि सही है, अच्छा आपको हो रही इसलिए सही है, आज अश्विन भाई नहीं ना आज आप क्योंकि केवली जिन अशेष द्रव्य पर्यायों को विषय करते हैं अपने सब काल में एक रूप रहते हैं और इंद्रिय ज्ञान से रहित है, अतएव उनका एक वस्तु में मन का निरोध करना उपलब्ध नहीं होता, और मन का निरोध किए बिना ध्यान का होना संभव नहीं है क्योंकि अन्यत्र वैसा देखा नहीं जाता। ये तो पहले उन्होंने बता चुके हैं, ये यहाँ पर कि केवली में जो ध्यान कहा है वो योग के निरोध को कहा है, और अन्यत्र जो ध्यान कहा है वो चिंता निरोध को कहा है। हमने कहा था उत्तम सहनन वाले को एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वो भी अंतर्मूर्त के लिए। देखो समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रकृत में, प्रकृत में भी केवली भगवान के बारे में, एक वस्तु में चिंता का निरोध करना ध्यान है, यदि ऐसा ग्रहण किया जाता है तो उक्त दोष आता है। परंतु यहाँ ऐसा ग्रहण नहीं करते, फिर शंका, तो यहाँ किस रूप में ग्रहण करते हैं? यहाँ उपचार से योग का अर्थ चिंता है, उसका एकाग्र रूप से निरोध अर्थात विनाश जिस ध्यान में किया जाता है वह ध्यान ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इसलिए यहाँ पूर्वोक्त दोष संभव नहीं है, यानी यह ध्यान ही किसको कहा कि योग के निरोध को ही यहाँ ध्यान कहा है। इस विषय में गाथा ऊपर 74। तो नालियाए तत्ताय सभायणो दरत्थम वा परिहादिकमेण तहा जोग जलम झाण जलनेन। जिस प्रकार नाली द्वारा जल का क्रमशः अभाव होता है, या तपे हुए लोह के पात्र में स्थित जल का क्रमशः अभाव होता है, उसी प्रकार ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा योग रूपी जल का क्रमशः नाश होता है। नाली यानी बहुत बड़ा कुछ समूह है, समुदाय, हम नल कहेंगे तो भी चलेगा, और टाकी का हमने नल छोड़ दिया तो क्या होगा? पानी बहते 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 पूरे टाकी खलास हो जाएगी, वैसे यहाँ कहते हैं। या दूसरा उदाहरण क्या दिया, तपे हुए लोह के पात्र में हम गैस ऑन कर दिया, पानी उबालने को रखा, और इसमें फोन आया और हम चले गए फोन पर बातें करते करते, क्या हो जाएगा? पूरा पानी सूख जाएगा, अभाव हो जाएगा। वैसे तो हम तो वहाँ ध्यान फोन पर किसी और का कर रहे हैं, यहाँ तो ये दूसरी बात है। तो ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा योग रूपी जल का क्रमशः नाश होता है। 75। जह सौव शरीर गयम मन्तेण विषम निरुम्भये डंके तत्तो पुणो वणिच्छति पहाण झरमंत जोएन। अभी मंत्र को याद किया। जिस प्रकार मंत्र के द्वारा सब शरीर में भिदे हुए विष का डंक के स्थान में निरोध करते हैं, क्या कहते हैं? कोई सर्प का डंक होता है, बिच्छू का होता है, तो वहां से वो विष पूरे शरीर में फैलता है। मंत्र के द्वारा क्या किया, उसको पूरा पूरे शरीर में भिदा था, वो डंक के स्थान में निरोध कर दिया, फैलने से खाली रोका नहीं, वो पूरा फिर उस स्थान में चला गया। और प्रधान क्षरण करने वाले मंत्र के बल से पुनः उसे निकालते हैं। एक मंत्र के द्वारा क्या किया, वो पूरा फैल था उसको समेट कर जहां डंक हुआ था वहां पर ले आए, और दूसरा बिल्कुल ये मंत्र की शक्ति थी पहले। ऐसे देखो तंत्र होता है, मंत्र होता है, और जो कुछ रस यानी केमिकल्स जिसको कहते हैं ना, ये आयुर्वेद ने उपचार जो औषधि होती है, रसायन जिसको कहते हैं, तो ये सारी ऐसी टेक्निक से, तंत्र ने टेक्निक जैसे, हाँ ऐसे मंत्रों में ऐसी शक्ति पाई जाती है, क्योंकि वो भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है। ये मंत्रों में अमोघ शक्ति है, वो तो दिखाते फिर भी, ये मंत्रों के द्वारा ये सारा प्राप्त होता था। विद्याएं जो भी थी वो भी मंत्रों के द्वारा होती थी। नहीं ये मंत्र की बात देखिए, अपने वो बात बताई थी ना शिवाजी राव भोसले की, फलटन में थे, मालूम है ना शिवाजी राव भोसले? हाँ नहीं मालूम, यहाँ बाबा साहेब भोसले थे अपने एमपी सीएम, उसके भाई, अभी वो फिलोसॉफी पढ़े हैं बहुत, उन्होंने पीएचडी की है, और जैनिज्म और ऊपर बहुत यानी उनका अभ्यास भी है। तो बचपन में फलटन में रहते थे, ये पूरा शिवाजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे ना वे, हाँ चांसलर थे, चांसलर थे। तो उन्होंने बचपन में एक महिला को देखा था, गांव में किसी को बिच्छू काटता था तो वो मंत्र से उसको उतारते थे, तो उससे बहुत प्रभावित हुए थे वे। तो ये मंत्र से बिच्छू का विष उतारती थी, तो उन्होंने उसको पूछा ये क्या बात है, कौन सी बात, यानी थोड़ा बड़े हो गए तो उसको कुतूहल तो था ना कौन सा मंत्र होगा क्या है। तो उन्होंने बताया मैंने ये नमोकार मंत्र से मैं ये बिच्छू का विष उतारती हूँ। तो उन्हें तो इतना आश्चर्य हुआ, तो एक मंत्र जो जैनिज्म का है उसमें इतनी ताकत है तो ये जैन फिलोसॉफी कितनी अच्छी होगी कि उसको पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने फिलोसॉफी विषय लेकर वो पीएचडी की, उसमें जैनिज्म पढ़ा। हाँ, और बहुत अच्छे जैनों को भी लेक्चर जाके सुनाते हैं, ये गांव में महाराष्ट्र में बहुत चलता है, और उनके भी अभी उनकी चर्चा हुई थी हमारे से इनके साथ बहुत। उनको ये प्रश्न था, वो अनंत वीर्य आप कहते थे सर्वज्ञ है आपके भगवान और अनंत बलशाली है, तो उनके ज्ञान में ये सारे दुख आते हैं और वीर्य भी इतना है तो दुख दूर क्यों नहीं करते, उनका पुरुषार्थ क्या हुआ उसके, ऐसे उनका प्रश्न था। उन्होंने बोला मैंने बहुत मुनियों का ये प्रश्न पूछा है, बहुत विद्वानों से मिला हूँ, मगर मुझे अभी तक समाधान नहीं हुआ। ये बात कभी 84 की होगी शायद, पूना में गई थे 84 की बात है, तब की बात है। और तब उसको सब बताया पुरुषार्थ क्या होता है, कौन से गुण के पर्याय होते हैं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ चलता है, वो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करके समझा। तो इतने खुश हुए थे तब से तो ये मंत्र की बात से वो सब निकला। ऐसे मंत्र पाए जाते हैं, यानी पहले तो इनका ज्ञान था लोगों को, अभी तो ये तो क्या बोंदूगिरी ज्यादा चलती है तो मंत्र से वो जो फैल रहा था विष, उसको जहां डंक यानी जहां वो काटा था वहां तक ले आए। और दूसरा प्रधान क्षरण, क्षरण करना है निकालना, उसके मंत्र के बल से पुनः उसे निकालते हैं। ये तो यहां दृष्टांत दे रहे हैं, अभी वो दृष्टांत आगे के गाथा में बताएंगे उसका सिद्धांत। तह बादर तनु विषयम जोग विसंछाण मंत बलजुत्तो अनुभावं मिनिरुंभदि अवणेदि तदो विजिन वेज्जो। उसी प्रकार ध्यान रूपी मंत्र के बल से युक्त हुआ यह सयोग केवली जिन रूपी वैद्य बादर शरीर विषयक योग विष को, यह योग को विषय कहा है, पहले रोकता है और इसके बाद उसे निकाल फेंकता है। ये यहाँ पर उनका सिमिली बताई, उसके साथ दृष्टांत बताया।
ये निकालना किसका मतलब है, अवनेदी का।
हाँ, बादर तनु विषम जोग विषम झाणम अंत बल जुत्तो, क्या करता है वो अभी अवनिज्जदी,
मतलब किसका मतलब रोकना और किसका निकालना।
देखो ऊपर भी आए थे ना शब्द, तत्तो पुनः अनिवज्जदी पहाण, पहाणे ने प्रधान झरमंत जोएन शरण मंत्र जोग से, वैसे यहाँ लिखा नीचे निरुम्बदी अवनेदी, पहले निरुम्बदी फिर अवनेदी और ऊपर वह अनिवज्जदी अवनिज्जदी कहा और यहाँ अवनेदी कहा। हाँ उसको निकाल फेंकता है लिखा ना, इस प्रकार तीसरे शुक्ल ध्यान का कथन समाप्त हुआ। अब चौथे शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं, यानी ये तेरहवे के अंत में जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती होती है और बाद में पूरे रूप से उसका निरोध होता है उसकी बात है यहाँ पर। अब चौथा शुक्ल ध्यान यथा, जिसमें क्रिया अर्थात योग सम्यक प्रकार से उच्छिन्न हो गया है, उच्छिन्न यानी बिल्कुल निकल गया है, वह समुच्छिन्न क्रिया कहलाता है। ये उसका विशेषण बना है ना, इसलिए वो क्रिया कहा। और समुच्छिन्न क्रिया होकर जो अप्रतिपाती है वह समुच्छिन्न क्रिया यानी क्रिया अप्रतिपाती ध्यान है, वो ध्यान के लिए विशेषण बताया। ध्यान कैसा है, समुच्छिन्न क्रिया यानी जो उच्छिन्न हो गया, समुच्छिन्न योग अच्छी तरह से सम्यक रीति से उच्छिन्न हो गया है, वो समुच्छिन्न है। और वो कैसा अभी अप्रतिपाती है, वो वापस दोबारा उल्टा उसका चक्र नहीं चलेगा, इसलिए समुच्छिन्न क्रिया या क्रिया अप्रतिपाती ध्यान है। यह श्रुत ज्ञान से रहित होने के कारण अवितर्क है, क्योंकि वितर्क श्रुत ज्ञान को कहते हैं। जीव प्रदेशों के परिस्पंद का अभाव होने से अविचार है, योगी नहीं है तो पलटने का सवाल ही नहीं है। या अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति के अभाव होने से अविचार है, इस विषय में गाथा 77 नंबर। अविदक्कम विचारम अनियट्ठी अकिरियम च सेलेसिम झाणम निरुद्ध जोगम अपच्छिमम उत्तमम सुखम। अंतिम उत्तम शुक्ल ध्यान वितर्क रहित है, विचार रहित है, अविदक्कम अविचारम अनिवृत्ति है, क्रिया रहित है, शैलेशी अवस्था को प्राप्त है। ये शैलेशी सुना है पहले, ये शैलेश्य भी कहते हैं इनको, हा? क्यों 18,000 शील के भेद, हाँ वो उसके स्वामी हैं, यहाँ पूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको शैलेश्यपना भी कहते हैं, शैलेश्य भी कहते हैं, शैलेशी भी कहते हैं। तो शैलेशी अवस्था को प्राप्त है और योग रहित है, इसका अर्थ योग का निरोध होने पर शेष कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान अंतर्मूर्त होती है। अब ये 14वें गुणस्थान में जब प्रवेश करता है तो चारों ही कर्मों की स्थिति समान है। तदनंतर समय में शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है, यानी अभी ये 14वां गुणस्थान प्राप्त होता है, और समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान को ध्याता है। अब शंकाकार पूछता है, यहाँ ध्यान संज्ञा किस कारण से दी गई है, इसको ध्यान क्यों कहते हैं?
पहले अलग है, नहीं अपन, क्योंकि अपन तो बोलते हैं समुद्गात में जो है वो बाकी तीन कर्मों की स्थिति
घटाई
उसके बराबर करता है, बराबर करता है।
हाँ तो ये अभी 14वें में
निरोध होने के बाद में,
क्योंकि योग के निरोध के काल में भी यथा योग्य उसका कुछ वहाँ अपकर्षण होता होगा ना। पहले तो बहुत मात्रा में की उन्होंने, बहुत अधिक मात्रा में। अब जब प्रवेश करने का समय तो चारों की समान स्थिति अंतर्मूर्त की, 14वें में जब प्रवेश कर दिया तब की बात है। हाँ वो समान कर हो जाए, समान हो जाता है। तो यहाँ ध्यान क्यों कहा? पहले ध्यान किसको कहा था? योग को निरोध करने को, सूक्ष्म होते होते उसका पूर्ण कंप्लीट अभाव हुआ, उसको ध्यान कहा था 13वें के अंत में। अब यहाँ क्यों ध्यान कहा? यहाँ तो कुछ योग भी नहीं है। पहले ध्यान किसको कहा था? एकाग्र चिंता निरोध को, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती को ध्यान क्यों कहा? योग का निरोध। अब फिर यहाँ ध्यान क्यों कहा, ये बात पूछ रहा है। तो कहते समाधान, एकाग्र रूप से जीव के चिंता का निरोध अर्थात परिस्पर्द का अभाव होना है। ये परिस्पंद का अभाव है, होना ही ध्यान है। इस दृष्टि से यह ध्यान संज्ञा दी गई है। शंका, इस ध्यान का क्या फल है? कहते समाधान में, अघाती चतुष्क का विनाश करना इस ध्यान का फल है। अभी अंतर्मूर्त में ही विनाश होने वाला है ना, यहाँ पर एक अंतर्मूर्त स्थिति है उसके। योग का निरोध करना तीसरे शुक्ल ध्यान का फल है। तीसरे शुक्ल ध्यान का फल क्या था? योग का निरोध करना, और यहाँ पर अघाती चतुष्क का विनाश करना, ये यहाँ पर ध्यान का फल है। शैलेशी अवस्था के काल के क्षीण होने पर, यानी 14वें गुणस्थान का काल समाप्त होने पर, सब कर्मों से मुक्त हुआ यह जीव एक समय में सिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार ध्यान नामक तप कर्म का कथन समाप्त हुआ। ये तप कर्म की बात चल रही थी अपनी। ये हम कितने प्रकार के कर्म हमने देखे ना, देखो यहाँ निकाल, बहिरंग तप कहा था, कर्म की बात पूछ रही हूँ मैं। चौपन पृष्ठ पर निकालने, ने सभी कर्मों के नाम लिए थे ना, 38 चौथे सूत्र में 38 पृष्ठ पर। देखो हमने क्या क्या देखा भी, नाम कर्म, स्थापना कर्म, मिला आपको चार नंबर का सूत्र, द्रव्य कर्म, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, इरियापद कर्म, ये तपक कर्म अभी देखा। अब क्रिया कर्म और भाव कर्म, ये दो बातें हैं, अब उसको बताएंगे 27 नंबर के सूत्र में। जम तम क्रिया कम्मम नाम, अब क्रिया कर्म का अधिकार है, इसके अर्थ का खुलासा करते हैं। तमादाहीनम पदाहीनम, वो न के ऊपर बिंदी अस्पष्ट हो गई है, तमादाहीनम पदाहीनम तिक्खुत्तम तियोनदम चदुसिरम बारसावत्तम तम संवम क्रिया कम्मम नाम, इस अर्थ का खुलासा। आत्माधीन होना, प्रदक्षिणा करना, तीन बार करना, तीन बार अवनति, चार बार सिर नवाना और 12 आवर्त, यह सब क्रिया कर्म है। ये मुनियों की अपेक्षा से खास बताया है। आत्माधीन होना आदि के भेद से वह क्रिया कर्म 6 प्रकार का है। ये हमने 6 बता पढ़े ना, आत्माधीन, प्रदक्षिणा वो तीन बार करना, तीन बार अवनति, चार बार सिर नवाना और 12 आवर्ता। ये सामायिक को बैठते तभी भी ये सब क्रियाएं करके बैठते हो। दे 6 प्रकार का, उनमें से क्रिया कर्म करते समय आत्माधीन होना अर्थात परवश न होना आत्माधीन होना कहलाता है। शंका, पराधीन भाव से क्रिया कर्म क्यों नहीं किया जाता है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि उस प्रकार क्रिया कर्म करने वाले के कर्मों का क्षय नहीं होता और जिनेन्द्र देव आदि की असाधना होने से कर्मों का बंध होता है। असाधना, ये सासाधन नाम भी वहां से आए ना, सासाधना असाधना असाधना, उसी को असाधना कहते, असाधना असाधना कहते ना, ये यहीं से शब्द आया असाधना। यानी स्वयं अपने अधीन होकर ये नमस्कार आदि क्रिया करे तो उसका फल मिले, ऐसा कहते हैं। वंदना करते समय गुरु, जिन और जिन ग्रह की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि क्रियाओं का तीन बार करना त्रिकृत्वा है, अथवा एक ही दिन में जिन गुरु और ऋषियों की वंदना तीन बार की जाती है, इसलिए इसका नाम त्रिकृत्वा है। शंका, तीनों ही संध्या कालों में वंदना की जाती है, अन्य समय में क्यों नहीं की जाती? उसका समाधान, क्योंकि अन्य समय में भी वंदना के प्रतिषेध का कोई नियम नहीं है। हाँ, आप कितनी बार चाहे 100 बार करो ना नमस्कार, ये तो 3 बार के मिनिमम की बात बताई। तीनों संध्या कालों में वंदना के नियम का कथन करने के लिए त्रिकृत्वा ऐसा कहा है। देखो संध्या ने शाम ऐसा नहीं लेना, संध्या ने संधि काल, रात और दिन का जो बीच वाला जो है उसको संधि काल कहते हैं, यानी प्रातः काल जिसको हम कहेंगे। फिर फिर मध्यान्ह और सो इन्हें दिन में दोपहर का काल जो है उसको मध्यान्ह कहते हैं, और शाम और रात्रि के बीच वाले वो संधि काल, सूर्यास्त होने वाला जो काल है उसको संध्या, ये तीनों काल संध्या काल कहलाते हैं। संधि है ना वो जॉइंट, तीनों संध्या कालों में वंदना के नियम का कथन करने के लिए त्रिकृत्वा ऐसा कहा है। देखो तीनों संध्या कालों में सामायिक का भी है ना वर्णन, तो ये सामायिक में बैठते उसके पहले ये इस पद्धति से क्रिया करके बैठते हैं। औणद का अर्थ अवनमन अर्थात भूमि में बैठना है, वह तीन बार किया जाता है, इसलिए तीन बार अवनमन करना कहा है। यथा शुद्ध मन, धौतपाद और जिनेन्द्र के दर्शन से, शुद्ध मन से धौतपाद ने पाए धोना, हाँ यानी स्वच्छ शरीर से स्नान आदि करके, जिनेन्द्र के दर्शन से उत्पन्न हुए हर्ष से। अब यह मुनियों के लिए तो स्नान नहीं है, हमारे लिए वो स्नान है, मुनियों के लिए वो तो कुछ पैर धो के अंदर जाएंगे जिनेन्द्र भगवान के सामने। जिनेन्द्र के दर्शन से उत्पन्न हुए हर्ष से पुलकित वदन होकर जो जिनदेव के आगे बैठना, यह प्रथम अवनति है। जो उठकर जिनेन्द्र आदि के सामने विज्ञप्ति कर बैठना, यह दूसरी अवनति है। फिर उठकर सामायिक दंडक के द्वारा आत्मशुद्धि करके कषाय सहित देह का उत्सर्ग करके, यानी कषाय का भी उत्सर्ग और देह का भी उत्सर्ग, हाँ हाँ, जिनदेव के अनंत गुणों का ध्यान करके 24 तीर्थंकरों की वंदना करके, फिर जिन जिनालय और गुरु की स्तुति करके जो भूमि में बैठना, वह तीसरी अवनति है। इस प्रकार एक एक क्रियाकर्म करते समय तीन ही अवनति होती है। अब क्रियाकर्म चतुश्शिर होता है, चार बार सिर नवाना कहा था ना। यथा सामायिक के आदि में जो जिनेन्द्र देव को सिर नवाना एक सिर है, उसी के अंत में जो सिर नवाना वह दूसरा सिर है। थोसामी दंडक के आदि में जो सिर नवाना वह तीसरा सिर है, तथा उसी के अंत में जो नमस्कार करना वह चौथा सिर है। इस प्रकार एक क्रियाकर्म कर्म करना कर्य हुआ चतुश्शिर होता है। इससे अन्यत्र नमन का प्रतिषेध नहीं किया गया है, क्योंकि शास्त्र में अन्यत्र नमन करने के नियम का कोई प्रतिषेध नहीं है। अथवा सभी क्रियाकर्म चतुश्शिर अर्थात चतुप्रदान होता है, क्योंकि अरहंत सिद्ध साधु और धर्म को प्रधान करके सब क्रियाकर्मों की प्रवृत्ति देखी जाती है। हम ये मंगल भी कहते हैं, चत्तारी कहते ना, चत्तारी मंगलम, वैसे यहाँ चार की मुख्यता से है। सामायिक और थोसामी दंडक के आदि और अंत में मन वचन और काय की विशुद्धि के परावर्तन के बार बारह होते हैं। ये बारह आवर्त का है ना परावर्तन, आवर्त यानी वो गोल इस तरह से नमस्कार करते, इसको आवर्त कहते हैं। हाँ नमस्कार करते चारों दिशा में तीन तीन बार करते हैं ना, बारह आवर्त होते हैं। इसलिए एक क्रियाकर्म बारह आवर्त से युक्त कहा है। यह सभी क्रियाकर्म है। ये हो गया क्रियाकर्म की बात, अब भाव कर्म की बात कल देखनी पड़ेगी, नया विषय होगा ना शुरुआत से।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो।
नमोरियंत ಯಂತಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಆಯುರ್ಯಾಣಂ ನಮೋ ವಿಜ್ಞಾನಂ ನಮೋ ಲೋಹಿ ಸವತ್ಸಾವನಂ ನಮೋ ಯಂತಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಆಯುರ್ಯಾಣಂ ನಮೋ ವಿಜ್ಞಾನಂ ನಮೋ ಲೋಹಿ ಸವತ್ಸಾವನಂ ನಮೋ ಯಂತಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ.